एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी शख्सियत की जिंदगी और उनके सफर की गहराई में उतर रहे हैं जिनके संगीत ने दुनिया को हिलाया है और जिनकी आवाज सिर्फ स्टेडियम में नहीं बल्कि दुनिया के सत्ता के गलियारों में भी गूंजी है।
हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं यूट्यूब बैंड के मशहूर फ्रंटमैन बोनो की,
और खास तौर पर उनकी आत्मकथा सरेंडर 40 सॉन्ग्स वन स्टोरी पर। हमारे पास इस किताब और उनके जीवन पर आधारित कई अच्छे स्रोत हैं, तो आज हम इसी पर एक गहरी बातचीत करेंगे। ये किताब मतलब सिर्फ एक रॉक स्टार की कहानी तो नहीं है, है ना? इसमें ऐसा क्या खास है?
नहीं बिल्कुल नहीं, ये किताब इसलिए खास है क्योंकि ये पॉल डेविड हेविनसन यानी बोनो के उस पब्लिक फेस के पीछे हमें ले जाती है, उनके अंदर के इंसान को दिखाती है।
अच्छा,
और सबसे बढ़कर जो किताब का टाइटल भी है सरेंडर यानी समर्पण का विचार, ये दिखाती है कि कैसे डबलिन का एक लड़का जिसके दिल में माँ को खोने का एक घाव था, वो पहले रॉक एंड रोल से उसे भरने की कोशिश करता है और फिर लगता है जैसे दुनिया के जख्मों को भरने निकल पड़ता है।
और ये 40 गानों वाली बात क्या है?
हाँ, वो बड़ा दिलचस्प स्ट्रक्चर है। किताब के 40 चैप्टर है और हर चैप्टर का नाम यूट्यूब के एक गाने पर है। ये गाने उनके जीवन के अलग अलग मोड़, एहसास या पड़ाव को दर्शाते हैं। एक तरह से उनकी जिंदगी का साउंड ट्रैक है ये।
कमाल है, तो चलिए सफर शुरू करते हैं शुरू से। डबलिन में उनका बचपन, वो माहौल कैसा था जिसने पॉल हिवसन को बनाया?
उनका जन्म हुआ 1960 में डबलिन के एक साधारण वर्किंग क्लास इलाके में, 10 सीडरवुड रोड। घर का माहौल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था।
कॉम्प्लिकेटेड कैसे?
पिता कैथोलिक थे, माँ प्रोटेस्टेंट, और 60s-70s के आयरलैंड में ये कोई छोटी बात नहीं थी। मतलब घर में ही एक तरह का विभाजन था, एक तनाव था। शायद इसी ने उन्हें शुरू से एकता और बंटवारे जैसे मुद्दों के बारे में सोचने पर मजबूर किया हो। लेकिन जो सबसे बड़ा मोड़ आया जिसने शायद सब कुछ बदल दिया, वो था जब वो सिर्फ 14 साल के थे।
उनकी माँ आयरिस का अचानक चले जाना।
हाँ, और वो भी अपने पिता यानी बोनो के नाना के अंतिम संस्कार के दौरान सेरेब्रल एन्यूरिज्म से। ये एक ऐसा शॉक था, एक ऐसा आघात कि बोनो इसे अपनी किताब में एक प्राइमल स्क्रीम कहते हैं, एक चीख जो अंदर ही रह गई।
बाप रे।
घर में पिता बॉब और बड़े भाई नॉर्मन के साथ एक अजीब सी खामोशी छा गई। कोई दुख बांटने का, बात करने का माहौल नहीं था, और शायद यही खामोशी थी जिसने उन्हें बाहर धकेला, बाहर शोर ढूंढने, कनेक्शन ढूंढने, एक नया परिवार ढूंढने।
और पिता बॉब हेफसन के साथ उनका रिश्ता भी सुना है काफी उतार चढ़ाव वाला था।
हाँ, वो भी बड़ा कॉम्प्लेक्स रिश्ता था। बॉब पोस्टल वर्कर थे, गाने का शौक था, आवाज अच्छी थी, लेकिन बेटे की ये रॉक एंड रोल वाली महत्वाकांक्षाएं उन्हें समझ नहीं आती थी, वो शंकित रहते थे।
अच्छा,
तो उनके बीच टेंशन भी थी और एक अनकहा सा प्यार भी था। और मजे की बात यह है कि पिता का ये शक कहीं ना कहीं बोनो के लिए एक ड्राइविंग फोर्स भी बना, उन्हें कुछ साबित करना था।
और इसी दौर में संगीत का असर?
हाँ बिल्कुल, डेविड बॉवी, टी रेक्स का ग्लैम रॉक जिसने उन्हें कल्पना की दुनिया दिखाई, और फिर द क्लैश जैसे पंक बैंड्स का गुस्सा, उनकी बेचैनी, ये सब उन्हें अपनी तरफ खींच रहा था।
और आस्था का भी जिक्र आता है उनके शुरुआती जीवन में, शालोम ग्रुप।
हाँ, वो भी एक अहम हिस्सा था। शालोम एक करिश्माई ईसाई समूह था, उसने उन्हें एक तरह की आस्था दी, एक समुदाय दिया, एक नैतिक फ्रेमवर्क दिया,
लेकिन
के साथ क्लैश करने लगी। ये द्वंद्व, ये संघर्ष उनके शुरुआती गानों में साफ झलकता है।
और फिर स्कूल में वो हुआ जिसने सब बदल दिया, यूटू का बनना और एली स्टीवर्ट से मिलना।
बिल्कुल, माउंट टेम्पल कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल, डबलिन का पहला नॉन डिनोमिनेशनल स्कूल। उस वक्त के आयरलैंड के हिसाब से ये बड़ी बात थी।
हाँ,
अलग अलग बैकग्राउंड के लोग एक साथ। बोनो शायद पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं थे, पर सोशली ये जगह उनके लिए बहुत जरूरी साबित हुई। यही 1976 में लैरी मुलिन जूनियर ने एक नोटिस लगाया ड्रमर ढूंढने के लिए।
अच्छा,
बोनो ने जवाब दिया, पहले नाम रखा फीडबैक, फिर द हाइप, और आखिर में यूटू। यही द एज यानी डेव इवांस मिले, एडम क्लेटन मिले, और ये सिर्फ बैंड नहीं बन रहा था, ये घर की खामोशी के उलट एक शोरगुल वाला पैशनेट, एक दूसरा परिवार बन रहा था।
और यही उन्हें अपना प्यार भी मिला, एली स्टीवर्ट।
हाँ बिल्कुल, एलिसन अली स्टीवर्ट, वो शुरू से ही उनकी जिंदगी में एक ठहराव लाने वाली ताकत रही, उनकी मॉरल कंपस। बोनो अक्सर कहते हैं कि अली उनके तूफान के बीच का शांत केंद्र है जो उनके सारे दिखावे के पार असली इंसान को देखती हैं। और इसी दौरान बैंड छोटे छोटे पब क्लब में बजाने लगा, अपनी पहचान बनाने की कोशिश, और साथ साथ बोनो एज लैरी का शैलोम ग्रुप से जुड़ाव भी गहरा हो रहा था।
तो वो संघर्ष चल रहा था, ईश्वर या रॉक एंड रोल?
हाँ, वो बड़ा सवाल था उनके सामने, क्या दोनों एक साथ चल सकते हैं? ये टेंशन उनके अंदर बहुत गहरी थी उस वक्त।
फिर बैंड आगे बढ़ा, आइलैंड रिकॉर्ड्स के साथ डील हुई और फिर दुनिया ने उन्हें जानना शुरू किया। संडे ब्लडी संडे जैसे गानों ने इसमें बड़ा रोल निभाया होगा।
निश्चित रूप से, उनके शुरुआती एल्बम बॉय, अक्टूबर, वॉर, उनमें वो कच्ची एनर्जी थी, आध्यात्मिक तलाश थी और आइलैंड के जो हालात थे उसकी झलक थी।
हाँ,
और वॉर एल्बम का गाना संडे ब्लडी संडे, जो नॉर्दर्न आइलैंड के ब्लडी संडे हत्याकांड पर था, उसने उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दी। वो सिर्फ एक गाना नहीं था, वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था।
लेकिन जो पल जिसने यूटू को सही मायने में ग्लोबल सुपरस्टार बनाया, वो शायद 1985 का लाइव एड कॉन्सर्ट था। क्या हुआ था उस दिन?
वाओ, वो तो आइकॉनिक मोमेंट है। लाइव एड, लंदन का वेम्बली स्टेडियम, दुनिया भर में करोड़ों लोग देख रहे थे। इथियोपिया के अकाल पीड़ितों के लिए फंड रेजिंग कॉन्सर्ट था। यूटू अपना गाना बैड परफॉर्म कर रहे थे और गाते गाते बोनो अचानक स्टेज से नीचे कूद गए, सिक्योरिटी बैरियर पार करके क्राउड में चले गए।
अरे?
और वहां से एक लड़की को बाहर निकालकर उसके साथ डांस करने लगे। ये सब बिल्कुल अनप्लान्ड था। उनके सेट का टाइम गड़बड़ हो गया, बैंड के बाकी लोग स्टेज पर परेशान किए क्या हो रहा है, उन्हें लगा शो खराब हो गया।
लेकिन दुनिया ने इसे अलग तरह से लिया।
हाँ, कमाल की बात यही हुई, दुनिया ने इसे एक रॉकस्टार के ईगो की तरह नहीं देखा, इसे देखा एक इंसान के दूसरे इंसान से कनेक्शन के तौर पर, जैसे मंच और दर्शक के बीच की दीवार टूट गई हो।
सही।
इसने यूटू के ईथोस को सेट कर दिया कि उनका संगीत सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं बल्कि एक डायलॉग है, एक कनेक्शन है। इस एक एक्ट ने उन्हें दुनिया के सबसे बड़े बैंड्स में से एक बना दिया।
वो शायद यहीं से उनके एक्टिविज्म की भी शुरुआत हुई, उस मंच की ताकत का एहसास।
बिल्कुल, शायद यहीं वो बीज पड़ा, उन्हें समझ आया कि इस मंच की पहुंच, इसका असर कितना ज्यादा हो सकता है।
इसके बाद तो द जोशुआ ट्री एल्बम आया।
हाँ।
वो तो मतलब मास्टरपीस माना जाता है।
हाँ, द जोशुआ ट्री 1987 तो क्लासिक है। ब्रायन एनो, डैनियल लेनॉयस के साथ बनाया गया एल्बम, अमेरिका के मिथक, लैंडस्केप, पॉलिटिक्स, इस पर एक गहरी काव्यात्मक टिप्पणी। गाने जैसे Where the streets have no name, I still haven't found what I'm looking for, With or without you, इसने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा बैंड बना दिया। पीक था ये।
लेकिन हर पीक के बाद थोड़ी ढलान आती है। Rattle and Hum के साथ ऐसा ही कुछ हुआ।
हाँ, कुछ हद तक। Rattle and Hum 1988 एक एल्बम भी था और एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी। रिएक्शन मिक्स्ड था, कुछ लोगों को बहुत पसंद आया पर कई क्रिटिक्स ने उन पर आरोप लगाया कि वो जरूरत से ज्यादा गंभीर हो गए हैं, आडंबर कर रहे हैं।
अच्छा,
मतलब अमेरिकी म्यूजिक की जड़ों को लेकर कुछ ज्यादा ही श्रद्धा दिखा रहे हैं। बैंड के लिए थोड़ा क्राइसिस का टाइम था, उन्हें लगा कि वो अपनी ही बनाई इमेज में फंस गए हैं।
और इस संकट से निकलने के लिए उन्होंने एक बड़ा क्रिएटिव रिस्क लिया, कुछ बिल्कुल अलग किया।
बिल्कुल, यही यूट्यूब की खासियत रही है, वो रिस्क लेने से नहीं डरते। उन्होंने महसूस किया कि अब आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है, अपनी इस सीरियस संत वाली इमेज को तोड़ना। और यहीं से जन्म हुआ 1991 के एल्बम आख्टुंग बेबी का। बर्लिन में रिकॉर्ड हुआ, दीवार गिरने के ठीक बाद, काफी टेंशन वाले माहौल में।
हाँ, सुना है वो सेशंस काफी मुश्किल थे।
बहुत मुश्किल, बैंड लगभग टूटने की कगार पर था, लेकिन उसी टेंशन से कुछ नया निकला। ये एल्बम उनके पिछले काम से बिल्कुल अलग था, ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक, इंडस्ट्रियल साउंड, शोरगुल वाला और आयरनी से भरा हुआ।
और इसके साथ जो टूर आया, जू टीवी टूर, वो तो अपने आप में एक फिनोमिनन था।
ओ, जू टीवी टूर, वो कमाल था। वो सिर्फ कॉन्सर्ट नहीं था, वो मीडिया, टेक्नोलॉजी, सेलिब्रिटी कल्चर, कंज्यूमरिज्म, इन सब पर एक जबरदस्त सटायर था।
कैसे?
मंच पर दर्जनों टीवी स्क्रीन्स लगी थीं, जिन पर लगातार इमेजेस और स्लोगन्स फ्लैश हो रहे थे, और बोनो ने दो नए किरदार अपनाए।
हाँ, द फ्लाई और मैकफिस्को।
बिल्कुल, द फ्लाई वो लेदर जैकेट वाला, बड़े सनग्लासेस वाला एरोगेंट रॉकस्टार, और मैकफिस्टो वो शैतान जैसा दिखने वाला, गोल्डन सूट वाला, सिगार पीने वाला कैरेक्टर, जो स्टेज से दुनिया के नेताओं को फोन लगाता था।
कमाल है।
इन किरदारों के जरिए बोनो अपनी ही फेम, अपनी इमेज और पावर के साथ खेल रहे थे। ये दिखाता है कि वो कितने डेयरिंग हैं आर्टिस्टिकली और कैसे खुद को लगातार बदलते रह सकते हैं।
तो ये तो हुई बैंड और संगीत की कहानी, लेकिन 21वीं सदी में बोनो की एक और पहचान बहुत मजबूत हुई एक एक्टिविस्ट के तौर पर।
हाँ बिल्कुल सही, उनका दूसरा काम जैसा वो खुद कहते हैं, उनकी सक्रियता, उनका एक्टिविज्म इस दौर में बहुत सेंटर स्टेज पर आ गया।
और उन्होंने सिर्फ बात नहीं की बल्कि बड़े ऑर्गेनाइजेशंस खड़े किए।
हाँ, उन्होंने अपनी फेम और अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल बहुत स्ट्रेटेजिकली किया। डेटा डेट एड्स ट्रेड अफ्रीका, फिर वन कैंपेन प्रोडक्ट रेड, ये सब बड़े प्रभावशाली संगठन उन्होंने को फाउंड किए।
इनका मकसद क्या था?
मुख्य रूप से अफ्रीकी देशों पर जो कर्ज का बोझ था उसे कम करवाना, एड्स टीबी मलेरिया जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए फंड जुटाना और अत्यधिक गरीबी को खत्म करने के लिए ग्लोबल लेवल पर पॉलिसी चेंज के लिए लॉबिंग करना।
और वो सिर्फ बयान नहीं दे रहे थे, वो सीधे पावर सेंटर्स तक पहुंच गए, राष्ट्रपतियों प्रधानमंत्रियों से मिलने लगे।
हाँ, यही बात उन्हें अलग बनाती है। वो सिर्फ एक सेलिब्रिटी एंडोर्सर नहीं बने, वो वॉशिंगटन DC, लंदन, ब्रुसेल्स, डावोस, हर जगह जाने लगे, राष्ट्रपतियों प्रधानमंत्रियों फाइनेंस मिनिस्टर्स, यहाँ तक कि पोप से भी मिले। और वो पूरी तैयारी के साथ जाते थे, डेटा फैक्ट्स आर्ग्यूमेंट्स लेकर, उतनी ही शिद्दत से लॉबिंग करते थे जितनी शिद्दत से स्टेज पर गाते हैं। किताब में इन मुलाकातों के बड़े दिलचस्प और ईमानदार किस्से हैं। वो इसकी आयरनी को भी समझते हैं कि एक रॉक स्टार वर्ल्ड लीडर्स को इकोनॉमिक पॉलिसी पर लेक्चर दे रहा है।
और इस सबके बीच पर्सनल लाइफ में भी तो काफी कुछ चल रहा होगा, संगीत तो चल ही रहा था।
हाँ, संगीत तो कभी रुका नहीं। ऑल दैट यू कांट लीव बिहाइंड 2000 जैसा बड़ा हिट एल्बम भी आया, लेकिन ये साल पर्सनल लेवल पर भी काफी अहम रहे। 2001 में उनके पिता बॉब का निधन हुआ।
हाँ।
जिसके बाद उन्होंने पिता के साथ अपने उस कॉम्प्लेक्स रिश्ते को और गहराई से समझा। फिर 2014 में न्यूयॉर्क में साइकिल चलाते हुए एक बहुत बुरी एक्सीडेंट हुई, जिसने उनके शरीर को और शायद उनकी ईगो को भी काफी चोट पहुंचाई। और फिर उसके कुछ समय बाद उन्हें दिल की एक सीरियस कंडीशन का पता चला। इसने उन्हें अपनी मोर्टैलिटी, अपनी नश्वरता का बहुत गहरा एहसास कराया। ये सारे अनुभव किताब के सेंट्रल थीम सरेंडर को और मजबूत करते हैं।
तो इतने सारे अनुभव, इतना कुछ, इन सब के पीछे बोनो का मूल दर्शन क्या है? क्या चीज उन्हें ड्राइव करती है?
उनका वर्ल्ड व्यू ना बड़ा यूनिक मिक्स है। एक तरफ पंक रॉक वाला रिबेलियन है, सिस्टम पे सवाल उठाने वाला, दूसरी तरफ एक गहरी पर थोड़ी अनकन्वेंशनल किस्म की ईसाई आस्था है।
अच्छा।
वो परिणामी कला यानी कंसीक्वेंशियल आर्ट में विश्वास रखते हैं। मतलब आर्ट सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है, आर्ट का काम दुनिया को बदलने में मदद करना भी है, उसे बेहतर बनाना है।
और उनकी आस्था?
उनकी थियोलॉजी कर्म से ज्यादा ग्रेस यानी कृपा पर आधारित है। बिना शर्त माफी, रिडेम्पशन की पॉसिबिलिटी, इसमें उनका गहरा यकीन है, इंसानों के लिए भी और शायद दुनिया के लिए भी।
और वो अपने विरोधाभासों को भी खुलकर स्वीकारते हैं, जैसे एक तरफ गरीबी के खिलाफ लड़ना, दूसरी तरफ खुद बेहद अमीर होना।
हाँ, और यही उनकी ईमानदारी है। वो कहते हैं कि असली पाखंड तो ये दावा करना है कि आप पाखंडी नहीं हैं। वो मानते हैं कि वो एक अमीर आदमी है जो गरीबी के खिलाफ लड़ता है, एक पापी है जो मंच से उपदेश देता है। और मैकफिस्टो जैसा किरदार बनाना वो इसी विरोधाभास को एक्सप्लोर करने का, उसे स्वीकारने का एक तरीका था। वो बड़े आइडियाज में यकीन करते हैं, जैसे एक्सट्रीम पॉवर्टी को खत्म करना। कहते हैं कि लक्ष्य इतना बड़ा होना चाहिए कि वो आपको हमेशा विनम्र रखे।
प्रेरणा कहाँ से मिलती है उन्हें? आपने माँ की मृत्यु का जिक्र किया।
हाँ, वो शायद सबसे बड़ा सोर्स है। वो खुद कहते हैं कि माँ के जाने से उनके अंदर एक गॉड शेप्ड होल बन गया, एक खालीपन, और ऐसा लगता है जैसे उनका पूरा करियर, वो स्टेज का शोर, फैंस का प्यार, बैंड की यूनिटी, अली का साथ, उनकी आस्था, सब कहीं ना कहीं उस खालीपन को भरने की कोशिश है।
और पिता?
हाँ, पिता के साथ वो रिश्ता भी एक बड़ी प्रेरणा रहा। शुरू में शायद अपने शक्की पिता को गलत साबित करने की जिद थी, बाद में उनके जाने के बाद उस रिश्ते को समझने की कोशिश, और तीसरा, दुनिया में जो अन्याय है उसके खिलाफ एक गहरा गुस्सा। खासतौर पर जब उन्होंने इथियोपिया, एल साल्वाडोर जैसी जगहों का दौरा किया, उन्हें लगा कि उनकी जो फेम है वो उन्हें एक जिम्मेदारी देती है उन लोगों के लिए बोलने की जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता। ये उनके लिए चॉइस नहीं, एक ड्यूटी बन गया।
अगर हम बोनो की जिंदगी को देखें तो ऐसे कौन से तीन सबसे अहम मोड़ या घटनाएं आप मानेंगी जिन्होंने उनकी दिशा को पूरी तरह बदल दिया?
चुनना मुश्किल है, पर हाँ कोशिश करते हैं। पहला तो बिना किसी शक के उनकी माँ आयरिस की मृत्यु 1974, 14 साल की उम्र में वो हादसा।
हाँ।
उसने उनके वजूद को, उनकी कला को, उनकी तलाश को, सबको शेप दिया। वो दर्द, वो खोज उनके कई गानों में है। जीवन कितना क्षणभंगुर है, ये एहसास उन्हें बहुत जल्दी हो गया।
बिल्कुल। दूसरा शायद वो लाइव एड वाला पल।
हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा। लाइव एट परफॉर्मेंस 1985, वो स्टेज से क्राउड में कूदने वाला पल। वो एक स्पॉन्टेनियस एक्ट था, पर वो एक सिंबल बन गया। उसने यूट्यूब को आम लोगों से सीधे जोड़ दिया, उन्हें ग्लोबल सुपरस्टार बना दिया। और बोनो के लिए, जैसा हमने कहा, शायद वो उनके मंच की असली ताकत और जिम्मेदारी का पहला बड़ा एहसास था। एक्टिविस्ट बनने की राह शायद वहीं से पक्की हुई।
सही। और तीसरा निर्णायक मोड़?
मेरे ख्याल से तीसरा सबसे अहम मोड़ था बर्लिन में आख्तुंग बेबी के सेशंस, और खास तौर पे वन गाने का लिखा जाना 1990।
अच्छा, वो क्यों?
क्योंकि रैटल एंड हम के बाद बैंड क्रिएटिवली और पर्सनली दोनों तरह से बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा था। बर्लिन में टेंशन इतनी बढ़ गई थी कि वो टूटने की कगार पर थे। तभी स्टूडियो में एक इम्प्रोवाइजेशन के दौरान दी एज ने कुछ कॉर्ड्स बजाए और बोनो ने लगभग तुरंत उस पर वो लाइनें लिख दी। वी आर वन बट वी आर नॉट द सेम, वी गेट टू कैरी ईच अदर। वो गाना जैसे कहीं ऊपर से उतरा।
और उस गाने ने सब ठीक कर दिया।
हाँ, उस एक गाने ने जैसे जादू कर दिया। बैंड में फिर से एक स्पार्क आ गया। ये उनके लिए एक सबक था क्रिएटिव सरेंडर का, मुश्किलों के बावजूद एक साथ रहने का। उसने न सिर्फ बैंड को बचाया बल्कि आख्तुंग बेबी जैसे मास्टरपीस का रास्ता खोला। और बोनो का ये यकीन भी पक्का हुआ कि अक्सर ब्रेकथ्रू वहीं से आता है जहां आप टूटने वाले होते हैं, जहां आप सरेंडर करते हैं।
तो बोनो की कहानी मतलब सिर्फ एक रॉकस्टार की नहीं बल्कि एक इंसान के बनने, बिगड़ने, फिर बनने की कहानी है। इससे आज हम क्या सीख सकते हैं?
बहुत कुछ। पहली चीज तो ये कि दुख या ट्रॉमा को फ्यूल कैसे बनाया जाए, कैसे हमारे गहरे जख्म भी हमें ताकत दे सकते हैं, क्रिएटिविटी दे सकते हैं, दुनिया में कुछ अच्छा करने का मकसद दे सकते हैं, जैसे बोनो ने माँ को खोने के दुख को अपनी आवाज दी।
सही।
दूसरी बात, अपने अंदर के विरोधाभासों के साथ जीना सीखना। परफेक्ट कोई नहीं होता। प्रामाणिकता शायद इसी में है कि हम अपनी कमियों, अपनी जटिलताओं को ईमानदारी से स्वीकार करें। बोनो की पूरी जिंदगी इसका सबूत है।
और
तीसरा, लंबे चलने वाली पार्टनरशिप्स की ताकत। चाहे वो अली के साथ उनका 40 साल से ज्यादा का रिश्ता हो, यूट्यूब बैंड का 4 दशक से ज्यादा साथ होना हो, या किसी कॉज के लिए उनकी दशकों लंबी लड़ाई हो, ये दिखाता है कि टिके रहने में, कमिटमेंट में कितनी शक्ति होती है।
और शायद सबसे गहरा सबक उस सरेंडर शब्द में ही है।
बिल्कुल, वही तो किताब का टाइटल है।
हाँ।
और शायद यही सबसे बड़ा, सबसे गहरा सबक है। असली ताकत कई बार लड़ने में नहीं, झुकने में, सरेंडर करने में होती है। अपने ईगो को सरेंडर करने में, हर चीज को कंट्रोल करने की इच्छा को सरेंडर करने में, जिंदगी की हकीकतों को, जैसे अपनी नश्वरता को स्वीकार करने में। ये कमजोरी नहीं, ये एक अलग तरह की समझ है, एक मैच्योरिटी है जो शायद ज्यादा शांति और सही दिशा दे सकती है।
तो अगर इस पूरी बातचीत को समेटना हो, तीन मुख्य बातें निकालनी हो, एक भावनात्मक, एक बौद्धिक और एक सार्वभौमिक सीख, तो वो क्या होंगे?
ठीक है, कोशिश करती हूँ। एक भावनात्मक अंतर्दृष्टि। सबसे इमोशनली पावरफुल बात यह है कि कैसे गहरा पर्सनल दुख, जैसे माँ को खोने का दर्द, किसी इंसान के लिए जिंदगी भर क्रिएटिविटी और दुनिया में बदलाव लाने का एक इंजन बन सकता है। हमारे जख्म हमें मकसद दे सकते हैं, ये एक उम्मीद जगाने वाली बात है। एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि। एक इंटेलेक्चुअल टेकअवे परिणामी कला या कॉन्सिक्वेंशियल आर्ट का आइडिया हो सकता है कि आर्ट का रोल सिर्फ एंटरटेनमेंट या सेल्फ एक्सप्रेशन नहीं, बल्कि दुनिया पर एक ठोस पॉजिटिव असर डालना भी है। या फिर ये समझना कि कैसे मैकफिस्टी जैसे किरदारों का इस्तेमाल अपनी ही इमेज, फेम के खतरों और क्रिएटिव बाउंड्रीज को तोड़ने का एक बहुत सोचा समझा स्ट्रेटेजिक तरीका हो सकता है। एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि। और सबसे प्रैक्टिकल यूनिवर्सल लेसन शायद सरेंडर का ही है। ये कमजोरी नहीं बल्कि अक्सर ताकत का सबसे ऊंचा रूप हो सकता है। अपने ईगो को, कंट्रोल की चाहत को, या मुश्किल हालात से बेवजह लड़ने के बजाय उन्हें स्वीकार करने से हमें ज्यादा शांति और सही रास्ता मिल सकता है।
दुनिया को बदलने का एक असरदार जरिया बन सकता है। या फिर यह हमेशा आर्टिस्ट के अपने ईगो, उसकी अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज और बाहरी दुनिया की पॉलिटिक्स के साये में ही रहता है। बोनो की कहानी इसका कोई आसान जवाब नहीं देती, पर यह सवाल आज के हमारे दौर में जहां सेलिब्रिटी एक्टिविज्म इतना कॉमन है और भी जरूरी हो जाता है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्व विख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए अकत्रा फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।